29 सफर मुजफ्फर 1426 हिजरी मुताबिक 8 अप्रैल सन 2005 ईस्वी 28वां पारा सूरह मुजादला शरीफ शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاضرتما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا Thank you. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Thank you. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذب يحذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم پاک بند نہ کیجیے گا کھول کر ہے بڑی ضرورت کی چیز ہے کبھی کبھی ہوتی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا سورہ مجادلہ شریف مدنی ہے اس میں تین رکوع ہیں 22 आए गए तो हिफु आयात 473 कलम 473 वर्ड्स 1792 हरूफ 1792 लेटर्स ये सूरह मुजादला है। सब बात मुजादला ये निकला है अरबी का एक लफ्ज होता है उसको कहते हैं जदल जीम ता लाम माने झगड़ा करना। तो मुजादला के माने है एक दूसरे के साथ आर्ग्यू। सूरह मुजादला के अंदर क्या बयान किया गया, इसका क्राइटेरिया क्या है, ब्रीफिंग उसकी हो जाए तो अच्छा है। इसमें शुरू में जिहार का मसला बयान किया गया। जिहार क्या है भी बता रहा हूं, तफसीर में आ रहा है। फिर दूसरा मसला बयान किया गया है, जब तुम गैदरिंग में हो, दो आदमी हो या तीन आदमी हो या चार हो या पांच हो या छह हो, तो जब दो आदमी हो तो किसी के खिलाफ बात न किया करो, इसलिए कि तुम दो हो तो इतना जान लो कि तीसरा अल्लाह ताला वहां है, वो तुम्हारी सब सुनता है। अगर तुम पांच होगे तो छठा होगा, तुम तीन होगे तो चौथा होगा, कम होगे जब भी होगा, ज्यादा होगे जब भी होगा। तो एक इस्लाही पहलू यहां बयान फरमाया गया है कि अगर इस बात को आदमी दिमाग में रख ले तो यकीन कीजिए कि बुराइयों की जड़ें खत्म कर देगा वो। भाई आदमी जब ये सोचे कि हम दो ही हैं लेकिन तीसरा तो अल्लाह है तो फिर जाएगा। उसके बाद आगे चल करके हुजूर की अजमत के हवाले से गुफ्तगू की गई, इंशाल्लाह जब उसकी बहस आएगी तो हम बताएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए सहाबे कराम के ऊपर एक अजीब हुक्म नाफिज किया गया, उतारा गया कि तुम मेरे महबूब से बात करना चाहते हो, मेरा महबूब कोई ऐसा वैसा नहीं है। शर्त है ये कि जब तुम महबूब से बात करने जाओ तो पहले कुछ सदका निकाल लो, फिर बात करो, और अगर तो सदका निकालो बात नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए रुकम उतरा था फिर मंसूब हो गया। और आगे अखीर में जो गुफ्तगु की गई है वो दो करोड़ों की हिजबुल्ला है जो शैतान की, और उसमें उस वक्त इंशाल्लाह अगर जिंदा में तशरीह कर देंगे, ये बात वजाहत कर दी गई है कि मोहब्बत रसूल के हवाले से अगर माँ बाप गुस्ताख रसूल हो तो उनको छोड़ देना लाजिम है, इसलिए कि मोहब्बत रसूल सब पर शौकियत रखती है। ये बहस की इसमें जिहार का मसला बयान किया गया है। जिहार क्या चीज है, इसकी थोड़ी सी बहस जिहार की सूरह अहजाब शरीफ आयत नंबर 4 में गुजर चुकी है, और सूरह अहजाब गज़वे अहजाब गज़वे खंदक ये हिजरत के चौथे साल या पांचवें साल शव्वाल मुकर्रम में हुआ था। गज़वे अहजाब गज़वे खंदक वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके तशरीफ लाए, चार पांच साल का अरसा गुजर गया है, इस्लामी हुकूमत की बुनियादें पड़ चुकी हैं और हर तरफ से इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मजहब के खिलाफ एल्गार हो रही है। जिसको देखो वो टूटा पड़ रहा है। तो उस वक्त उनके कुरान उतर रहा था, अल्लाह के रसूल दाई बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा थे, मौजूद थे, इसलिए सहाबा कराम को ज्यादा कोई दुख नहीं हुआ करता था, क्योंकि दाफ़ेउल बलाए वल वबा मौजूद है। हुज़ूर की सिफत है दाफ़ेउल बलाए वल वबा, मुसीबतें और परेशानियों को दफा करने वाले टालने वाले हुज़ूर मौजूद थे। इसलिए जो कुछ होता था सहाबे कराम का सीधा सा एक तरीका था, कुछ भी हो, पैसे कम हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, सीधे हुजूर के पास। पैसा मांगना हो तो हुजूर के पास, शिफा तलाश करनी हो तो हुजूर के पास, किसी ने कुछ कह दिया है तो हुजूर के पास, वही एक जगह थी, वही मर्जा थे, और सब अपना दुख दर्द लेकर के वही उसी बार जाता है। इसलिए उस वक्त कोई ज्यादा मसला नहीं। इसी तरह का एक मसला हुआ, एक सहाबी रसूल है हजरत औस इब्न सामित, हजरत उबादा इब्न सामित के भाई हैं। इनकी बीवी, इनका नाम खौला बिनत सालबा है। हजरत खौला बिनत सालबा, इनकी शरीक हयात, बच्चे काफी थे। एक रोज उन्होंने कोई बात रही है, हदीस में उसको जिक्र किया गया लेकिन मैं हजार नहीं कर सकता, कोई बात रही है तो उन्होंने मारे गुस्से में आकर के अपनी बीवी खौला बिनत सालबा से कह दिया कि अंत अनैया का मुहर उम्मीद, तू मेरे लिए मेरे मां की पीठ की तरह है। अंत अनैया का मुहर उम्मीद, मसला याद रखिएगा, बहुत नाजुक घड़ी है ये, तो मेरे ऊपर मेरे लिए मेरे मां की पीठ की तरह है। ये जुमला जाहिलियत के जमाने में, इस्लाम से पहले तलाक हुआ करता था, लेकिन जब हजरत औस इब्न सामित इस्लाम ले आए, अब ये जुमला कहा है तब तो बात हो सकता है बन जाए, हो सकता है बिगड़ जाए। फिर हजरत औस कहते हैं कि देखो मेरी जुबान से ऐसी बात निकल गई है, मेरे ख्याल में तुमको तलाक हो गई, बच्चे हैं काफी। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला ने हुजूर के पास आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जवान थी, मैं औस से बहुत प्यार करती हूं, या रसूल अल्लाह मेरी जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया है, बच्चे मेरे हैं, वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बात कह दी, अंत्याल या कब हमारी उम्मी, हजूर मेरे बारे में फैसला फरमाए, अगर तलाक हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा हजूर, इसलिए कि बच्चे अगर उनके पास छोड़ूंगा तो बगैर मेरे रहने से कहेंगे मर जाएंगे, और मैं अपने पास रख नहीं सकती हूं, इसलिए कि मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं, जब भी कुछ कर्म फरमा दे। उन्होंने फरमाया तेरे ताल्लुक से भी मेरे पास कोई हक नहीं। तो सुनिएगा, मकाम मुस्तफा को समझने के लिए जब तक इश्क की रोशनी दिल के अंदर नहीं होगी, कभी भी हुजूर के मकाम को समझा नहीं जा सकता है। वो जानवर है वो लोग जो मिजाज मुस्तफा और अजमत मुस्तफा और हुजूर के स्टेटस से नावाकिफ है, जानवर है, बल्कि जानवर भी अजमत मुस्तफा पहचानता है, जानवरों से बदतर कोई चीज है, जानवर भी तो हुजूर की अजमत करता है यार, मौजूद रह जाएगा, वरना फिर सुनी भी जो हदीस पाक मिशकात की है। सुन लीजिए, हुजूर की अजमत का हाल तो जानवर इतना पहचानता है, आदमी क्या पहचान। सहाबी रसूल है, जा रहे थे, रास्ते में शेर बैठा हुआ था, रास्ता बंद, कोई जो उधर वाले उधर में कोई उधर जा, उधर जा सकता ना, उधर कैसे जा सकता, पहाड़ी के बीच में एक ही रास्ता था, बैठा हुआ था शेर, क्या किया जाए। ऐसे सफीन आना मिश्कात की हदीस पाक, ये गुजर रहे थे, पूछा क्या बात है भाई, सब भूल लगी हुई, क्यों क्यों क्या बात है? बोले रास्ते में शेर बैठा हुआ। अच्छा, गए जाके कहा या अबा हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शेर मौजूद का गुलाम। कहा ये शेर मौजूद का गुलाम। और उसके बाद उठ जाए से चल। रावी कहते हैं कि शेर चलता रहा आगे आगे, ये पीछे पीछे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, रास्ता झंडे हट गया। हजूर के पहचानने की बात तो बड़ी रही यार, गुलामों की शान है, देखो गुलामों की शान ये है। अजमत मुस्तफा पहचानने के लिए इश्क रसूल बहुत जरूरी है, और जिसका दिल इश्क रसूल से खाली हो कुछ लिखा जा सकता है, अल्लाह उसे हिदायत दे। बस हजरत खौला परेशान, हजूर फरमाए तेरे लिए कोई हुक्म, मेरे पास कोई हुक्म नहीं होता है। तो या रसूलल्लाह करम कीजिए। और उसके बाद आसमान की तरफ आग उठा करके कहते हैं ये रब्बे करीम, या अल्लाह मैं तुझसे अपनी बेकसी, अपनी मोहताजी, अपनी परेशान हाली की शिकायत करती हूं, मेरा रब अपने नबी पर मेरे ताल्लुक से कोई हुक्म उतार दे। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर के सर मुबारक को धो रही थी, दाहिनी तरफ का धो चुकी थी, बाईं तरफ का धोना शुरू ही किया कि हुज़ूर पर वही उतर दे गई। हज़रत सय्यदा आयशा फरमाते हैं चुप रह, देख हुज़ूर का चेहरा मुबारक नहीं देख रही है। अल्लाह अकबर, वही उतर गई। हुज़ूर ने फरमाया जा अपने शौहर को बुला करके ले आओ। खौला गई, हजरत औस को बुला करके लाई। हुज़ूर ने फरमाया जरा सुनिएगा नतीजे की बात। हुज़ूर ने फरमाया देखो ये ज़िहार है और अब इसका तुम कफारा अदा करो। जाहिलियत में तलाक होती थी, इस्लाम में तलाक नहीं है ये, लेकिन ये कफारा है, इसको कफारा इसका देना पड़ेगा। और इसका कफारा अल्लाह ताला ने उतारा है कि नंबर एक जाके गुलाम आजाद करो। तो अर्ज करते हैं रसूलल्लाह हम ही दोनों मियां बीवी हैं, बच्चे हैं, कोई गुलाम तो है नहीं, हम तो नहीं आजाद कर सकते हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया अच्छा तो ऐसा करो कि फिर तुम दो महीने का मुसलसल रोजा रखो, लेकिन इस बीच में अपनी बीवी के करीब न जाना। तो कहते हैं या रसूलल्लाह दो महीने के रोजे की बात करते हैं, मेरा तो हाल ही के दिन भर में पूर मरतवाना खाओ तो आंखी की रोशनी चली जाती है। नहीं बोलते भी समाज में क्या पूरी भूख लगी कि आंखों का अंधेरा आ गया है। तो यार सुना अगर दिन भर में पीर मरतवाना खाओ तो आंखी रोशनी मन में नहीं जाती है। दोस्तों ने फरमाया अच्छा जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। तो कहने लगे यार रसूलल्लाह ये तो दूसरा नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ अगर आप कुछ दे दें तो चलिए मैं कर दूंगा। अल्लाह क्या नवाजिश है आका की, क्या करम है अपने अपने मानने वालों पर। खुदा की कसम तलाश कर डालिए पूरी इंसानियत, तलाश कर नहीं पाइएगा। इतने में हुज़ूर के पास कुछ सामान लाए, 10 या 15 औकिया से कुछ था या साल से कुछ था। हुज़ूर ने फरमाया ये ले जाओ और जाओ खाना खिला दो सबको, मिस्कीनों को, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अल्लाह ये है ज़िहार। ज़िहार का कई वाकया तारीख में रूनमा हुआ है, लेकिन ये आयत उतरी जो है वो हज़रत खौला और हज़रत औस ही के ताल्लुक से। ज़िहार इसे कहते हैं कि अपनी बीवी के जिस्म के उन हिस्सों को जिसका शरान गैर को देखना हराम है, उसका मुहर्रमाते नसबिया या रजाइया से उसकी मुशाबहत दे देना, जैसे पेट, पेट, पीठ, रान वगैरह कि तेरी जान मेरे माँ की जान की तरह से है, तेरी पीठ मेरे माँ की पीठ की तरह से है, तो ये जहार हो जाता है। और जहार के लिए यही हुक्म है, तीन हुक्म कुरान पाक में बयान फरमा दिया गया है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसे जहार है। ये सब बातें हमारे यहां सब हो चुकी है। रमजान मुबारक में तरावीह के बाद जिसको कुरान की तफसीर सुननी, तो रमजान में तरावीह के बाद बैठ जाए, पूरे कुरान की तफसीर का खुलासा हमने बयान कर दिया है 12 साल। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वाकया सुने हज़रत खौला का, कि इस वाकये के बाद सहाबा के दरमियान इनकी बड़ी अफ़वाह हो गई। हज़रत खौला के एक बार का जिक्र है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अमीर मोमिनीन बन गए तब, तो ये जो है जा रहे थे रास्ते में, पीछे कुरैश के बहुत सारे लोग थे, घोड़ों पर सवार थे, देखा कि एक औरत रास्ते में ही, उन्होंने हज़रत उमर फारूक को रोक लिया और बातें करने लगी। कहती हैं कि या उमर कद कुंत तदई उमैरा अन नकील लक उमर नकील लक मिन मोमिन कद तकिला या उमर फयूम मन अयकन बिल मौत खाफ अल फौत ومن ايقن بالحساب خاف العذاب। हजरत ये ज़ईफ़ा कहने लगी कि ए उमर, तुमको याद है जब तुम्हें लोग उमैर कहा करते थे, बहुत पहले की बात, बचपन की बात, तुम्हें उमैर कहा करते थे? ये सुनते रहे, हाँ याद है। ए उमर, उसके बाद कुछ लोग तुमको उमर कहना शुरू किए, ये भी याद है। ए उमर, फिर तुम अमीर मोमिन बना दिए गए, याद है। उमर उमर अल्लाह से डरते रहे ना, वो बूढ़ा बूढ़ी और जो है ज़ईफ़ा कह रहे। जिस शख्स ने मौत का यकीन कर लिया तो वो अब फौत से बेनियाज हो गया, फौत फौत या चीजों के लिए खौफजदा रहेगा, देर तक बातें करती रही, वो घोड़े से नीचे उतर आएगा, खच्चर से नीचे उतर आएगा। जब बात कंप्लीट हो गई तो पीछे किसी शख्स ने कहा कि अमीर मोमिनीन, इतने कुरैशियों को आपने इस बूढ़ी औरत से बात करने के लिए रोक लिया, अब हजरत उमर फारूक का जवाब सुनिए और ईमान आ जाए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, वल्लाहि लव हदसतनी मिन अव्वल नहार इला आखिरह ला दारत इल्ला लिस्सलात मक्तूबा فقيل له يا امير المؤمنين اتقبل هذا العجوز هذا المقول؟ فقال والله لو حدثتني من افضل النهار الى اخره ما زالت الا للصلاه المكتوبه. اتدرون من هذه العجوز؟ هي خوله بنت ثعلبه. تم لوگ اس بوڑھے کے بارے میں سے بات کر رہے ہو، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اگر مجھ سے صبح سے لے کر کے شام تک کھڑی ہو کر کے اسی طرح بات کرتی رہتی تو میں اسی طرح بات کرتا رہتا، سوائے اس کے فرض نمازوں کے لیے چلا جاتا، پھر واپس چلا جاتا، جب تک یہ نہ رکتی میں نہیں رکتا۔ جانتے ہو کون ہے یہ؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ اور جو اس حدیث کا خاص جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمع اللہ قولها من فوق سبع سماوات ایسمع رب العالمین قولها ولا يسمع عمر۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی بات کو اللہ تعالی نے ساتوں آسمان سے اوپر سن لیا ہے، تو کیا عمر اس کی بات یہاں نہیں سن سکتا؟ جملہ دیکھ رہے ہیں، وہ عورت ہیں، وہ خاتون ہیں کہ جن کی بات کو اللہ نے ساتویں ساتوں آسمان سے اوپر سنا ہے، عمر کیا یہاں اس کی بات نہیں سن سکتا؟ اللہ، یہ وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا یہاں تک، آیت نمبر 4 تک جا کر کے یہ بات کمپلیٹ ہوئی ہے، ہم نے خلاصہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے کچھ دوسری گفتگو ہو چکی ہے۔ بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملہ میں بحث کرتی ہے، رسول اکرم سے گفتگو کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ، میرے بچے مر جائیں گے، نہ اوس رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، نہ میں رکھ سکتی ہوں اکیلے، نہ ہمارے پاس کھانے کو ہے، نہ بچے ان کے پاس مطمئن رہ پائیں گے، یا رسول اللہ کچھ کرم کیجیے۔ उस कर्म कीजिए। लोग बकवासें करते हैं, जो कुछ कहना हो अल्लाह से कहा करो। हजरत खाला को सीधे हाथ उठाकर को ही कहना चाहिए था कि अल्लाह अब मैं क्या करूं, उतार गुजर होकर कुछ आई कहा करो, आई किसके पास, हजूर के पास, शिकायत किससे की, रसूल अकरम से मदद किससे चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अल्लाह ताला ने उनके पास आने की सूरत में वही उतार करके उनकी मदद फरमाई और उनके मसले को हल करा। देखो जब आप तफसीर ना किसी सुन्नी से हिंद अकीदा आलिम से सुनोगे तो आपका ईमान दूसरा होगा, किसी बदहा से सुनोगे तो कुफ से दिल सियाह हो जाएगा। युबिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये कुरान हुआ है कि इससे गुमराह भी लोग होते हैं, इससे हिदायत भी लोग पा जाते हैं। तो आपके अख्तियार की बात है। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, नबी से बात कर रहा हूं बस, और इस दोनों मजमूए से अपने आका की शख्सियत का अंदाजा आप लगा। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सर वो तस्तकीर अल्लाह और अल्लाह से शिकायत कर रही है, वल्लाह इस्मुह तहावुरकुमा, अलहिरार माने बहस होती है, गुफ्तगु इंटरव्यू, तो तुम दोनों की बहस को अल्लाह ने सुन लिया है। तुम मेरे महबूब से कह रही हो ए खौला, अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह सभीओं का सही, अल्लाह जल्ला शानू बहुत सुनता है, बहुत देखता है, सुनता भी है, जानता भी है, देखता भी है। अच्छा तो अब सुनो, तुम्हारा सलूशन उतार दिया गया है। ये सलूशन अल्लज़ीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम, वो जो तुमने अपनी बीवियों को अपनी मां की जगह कह बैठते हैं, बाहुन्ना उम्महातिहिम, उनकी माएं नहीं है, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाह वलदनहुम, उनकी माएं तो वही है जिनसे वो पैदा हुई है, वइन्नहुम लयकूलून मुनकर मिनल क़ौल ज़ूरा, और वो बेशक बुरी और मिली झूठ बात कहते हैं, और बेशक इन्नल्लाह लअफूर गफूर, अल्लाह जरूर माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जिहार से बीवी मां नहीं बन सकती है, जिहार से मुशाहदत सिमिलैरिटी, उसके जिसमें महफूज को जिसका देखना किसी के लिए शवर के अलावा जायज नहीं है, अपनी महरमात नस्बिया से उसकी तशबीह दी, ये गलत किया है, झूठ है, बुरी बात है। लेकिन क्या वाकई वो मां की तरह हो गई? हरगिज़ हरगिज़। चुनांचे इमाम कुर्तुबी ने इस तरह के तकरीबन कई वाकयात नकल किए, एक जगह लिखा है कि वाकया खौला बिन्त सालबा का है, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि ये सलमा बिन 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 सकरुल बयाजी का है, और तीसरा वाकया कि खौला बिन्त दलीज का है। ये कई वाकया लिखा हुआ है। एक वाकया और मानो पुत्र ने लिखा नकल किया है, बड़ी अजीब सी बात है। कहते हैं अब ये बात पता चल गई कि जब कोई आदमी अपनी बीवी से जिहार करे तो फिर जब तक कफारा पूरा न कर दे उस वक्त अपनी बीवी से के करीब नहीं जा सकता है। इमाम कुर्तुबी ने हदीस नकल किया, इब्न अब्बास ان رجلا ظهر بنا امرأته فغشي قبل ان يكفر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رايت ابياض الخلقان في ضوء القمر فلا املك نفسي ان وقعت عليك، فضحك النبي وامره ان لا يقرب حتى يكفر. ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا اور کفارہ دینے سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے قربت کر لی، ने पूछा कि ये काम तुमने क्यों कर लिया? कहना अल्लाह वो पाजरे पहन करके जा रही थी, बड़ी छिल गई, तो मेरे को बीवी से कुर्बत कर ली। फरमाया अच्छा ये कर लिया तुमने ना, तब तुम कफारा अदा किया। तो इसे पता चला कि जिहार से तलाक नहीं होती है। हाँ ये है कि बीवी उस पीरियड तक के लिए उसके ऊपर हराम हो जाती है जब तक वो कफारे को अदा ना कर दे, और कफारा अदा कर दे
फिर उसकी बीवी है, न कोई निकाह पढ़ाने की जरूरत है, न कोई रुजू करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है ना? अब कफारा बहन हो रहा है वल्लज़ी यज़ऊन मिन निसाहिम, और वो जो अपनी बीवियों को अपनी मां की जगह कह बैठे जिहार कर ले, फिर वही करना चाहे जिस पर इतनी बड़ी बात कह चुके, यानी फिर बीवी से रुजू करना चाहे, तो उनके लिए ये है कि उन पर लाजिम है एक गुलाम आजाद करना, बर्दा गुलाम बोलते, एक गुलाम आजाद करना कि गुलाम आजाद, इससे पहले कि बीवी को हाथ लगाएं। यह है जो नसीहत तुम्हें की जाती है और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। गुलाम आजाद करे, अगर गुलाम आजाद करने की उसके अंदर सलाहियत नहीं है, उसकी पहुंच नहीं है, फमल लगेजी नहीं पाया उसने, गुलाम न मिल सका उसको, फसियाम शहरैन मुतताबिअैन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, तो दो महीने के रोजे कंटिन्यू रखे बगैर हाथ लगाए भी, फमल लम यस्तति, रोजा भी नहीं रख सकता है। जैसे उसने कहा था कि या रसूलल्लाह अगर दिन भर में तीन मर्तबा ना खाऊं तो आंखों की रोशनी हल्की पड़नी शुरू हो जाती, तो मैं फिर सात दिन का रोजा कैसे रख सकता हूं। एक दूसरी रायत आई इसी में पुर्तली ने, इमाम पुर्तली ने बयान फरमाया, एक सहाबी आए तो कफारे के ताल्लुक से उन्होंने फरमाया कि 60 दिन तक कंटिन्यू रोजा रख बगैर हाथ लगाए बीवी को, तो कहने लगे या रसूलल्लाह ये मंजिल इसी बुनियाद पर आई है कि मैं अपनी बीवी के बगैर रह नहीं सका, और इसी दौरान मैंने अपनी बीवी से गुर्बत कर ली है, तो मैं 60 दिन का रोजा कैसे रख सकता हूं। सहाबे किराम ऐसे ऐसे सवाल का तो देखें, जो हदीस में लिखी है ना, कह रहे फवाहिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी अहलिया गुजर रही थी चांदनी रात की, पाजे पहने पाजे की चमक जरा से मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बस उसके बाद मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, मैंने बीवी की गुर्बत कर ली, पता फवाहिका, तो हुजूर हंस पड़े उनकी बात सुनकर के, ये हवालिश है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखें एक बात याद रख लीजिए, शरीयत और इस्लाम नेचर और तबीयत के अगेंस्ट किसी चीज का हुक्म नहीं देते, इसको बात दिमाग रखिएगा। इस वाकई हदीस के इस वाकई के पीछे छुपी हुई एक एक इंसानी फितरत का इरादा जो किया गया है कि उनके पाजेब को देखा हुए जेवर ही तो ज्वेलरी है भाई, वो ज्वेलरी बन के जा रहे थे तो मेरी बीवी तो मैंने उनको देखा चांद रात अच्छी लगी, तो मैंने खाई पैदा हो गई, नेचर है ये, तबीयत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर उनको डांटा नहीं, फवाहिका, हंस पड़े अल्लाह के रसूल, मुस्कुरा उठे, क्यों? उसने की ये आदत है, नेचर है, अपनी अहलिया है, अपनी अहलिया से अपनी शादी इसी में की ही जाती है। कुछ लोग शरीयत में बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से मिला देते हैं, ये बात ठीक नहीं। तो साहब 60 दिन का रोजा रखे, अगर नहीं रख सकता है तो आखिरी पहलू ये है, अभी आगे आ रही है कि फैदा में से तीना मिस्कीना, कि फिर वो 60 मिस्कीनों का खाना खिला दे। दानिक अलतुमिनु बिल्लाहि व रसूली, ये तो ये है कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए हैं और ये अल्लाह की हदें हैं, और अल्लाह की हदों का तोड़ना अच्छी बात है, काफिर आजाद अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, जो इन हदों को तोड़ेगा फिर वो अल्लाह के मुआवजे से बच नहीं सकता है। ये था जिहार का मसला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टॉपिक, इसको जरा सुने, इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू, बेशक वो जो मुखालफत करते हैं अल्लाह उसके रसूल की, जलील किए गए जैसे उनसे अगलों को जिल्लत दी गई, और बेशक हमने रोशन आयतें उतारी और काफिरों के लिए जिल्लत का आजाब खारी का आजाब है। कब? यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअ, जिस दिन अल्लाह उन सबको उठाएगा और फिर उन्हें उनके करतूतों, लफ्ज कोतक से भी आ रहा है, तो बरेली की बोली में कोतक, बुरे अमल को कोतक बोलते हैं, और हमारे मशरकी यूपी में ईस्टर्न यूपी में इसको करतूत बोलते हैं, तो कोतक एक बुरा अमल, फिर उन्हें उनके बुरे अमल जता देगा। अल्लाह ने दिल रखा है और वो भूल गए, और अल्लाह और हर चीज अल्लाह के सामने, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करते हैं,
مخالفت کرتے, مخالفت فی العمل, مخالفت فی المحبت, مخالفت فی العقیدہ, کسی بھی نوع کی مخالفت اگر ہو رہی ہے. لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے دراصل یہ خاص طور سے اشارہ ہے مشرکوں, منافقوں, یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف, اس لیے کہ مدینہ منورہ کے ماحول میں ان لوگوں نے مسلمانوں کی زندگی کو بالکل یعنی اجیرن بنا رکھا تھا,